नमस्कार भारत, आज है 21 दिसंबर दिन शुक्रवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन पर साइबर जासूसी का आरोप लगाया।
As evidenced by this investigation, the threats we face have never been...
क्या जीका वायरस विदेशी सैलानियों को राजस्थान आने से रोक पाएगा?
जीका वायरस के केस जुलाई अगस्त सितंबर में राजस्थान में मिले थे, लेकिन वर्तमान में भी अक्टूबर के बाद में कोई केस पॉजिटिव नहीं है।
पंचायत चुनावों में हेलीकॉप्टर से प्रचार, लेकिन कहाँ?
एक घंटा उड़ान के लिए वो लोग 99,000 लेता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर का खर्चा किस अकाउंट में जाएगा?
बिहार में उपेंद्र कुशवाहा से महागठबंधन को कितना फायदा होगा?
कुछ न कुछ झटका तो एनडीए को लगा ही।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। अमेरिका ने चीन के कंप्यूटर हैकरों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि उन्होंने अमेरिका की सरकारी एजेंसियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अमेरिका के न्याय विभाग की ओर से कहा गया है कि ये हैकर चीन के खुफिया विभाग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी चीन के खुफिया एजेंसी पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस अगले साल फरवरी माह के अंत तक अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। ट्रंप ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। जिम मैटिस के बाद रक्षा मंत्री का पद कौन संभालेगा, फिलहाल इसका ऐलान नहीं किया गया है। ब्रिटेन के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक गैटविक एयरपोर्ट पर दिखे अज्ञात ड्रोन के चलते विमानों की आवाजाही अभी तक रुकी हुई है। इसी सिलसिले में अब ब्रिटेन की सेना भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया है कि मामले की नजाकत को देखते हुए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट पर बुधवार को रनवे के पास कुछ अज्ञात ड्रोन देखे गए थे, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। ब्रिटेन के परिवहन सचिव क्रिस ग्रेलिंग ने कहा है कि ड्रोन उड़ाने से जुड़े नियमों को और कड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा,
It is illegal to fly a drone close to an airport. There is a long jail sentence for people who endanger an aircraft.
एयरपोर्ट के नजदीक ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी है। जो कोई भी हवाई जहाज की उड़ान में रुकावट पैदा करता है, उसे जेल की सजा का प्रावधान है। हम ड्रोन उड़ाने से जुड़े नियमों को और कड़ा करेंगे। फिलहाल इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ये थे ब्रिटेन के परिवहन सचिव क्रिस ग्रेलिंग के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीरिया से अमरीकी सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाने के फैसले का कई अमरीकी नेता विरोध कर रहे हैं। वरिष्ठ रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने डेमोक्रेटिक पार्टी के दो सदस्यों के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता की और राष्ट्रपति ट्रंप को हिदायत दी कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। प्रेसवार्ता में लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमरीकी सेना के सीरिया से हट जाने के बाद वहां मौजूद कुर्दिश सहयोगियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही इससे ईरान सीरिया में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। लिंडसे ग्राहम ने कहा,
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my view.
मेरे विचार से राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल हमें यह फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वहां मौजूद कुर्द लड़ाके तुर्की, असद और शायद आईएसआईएस के सामने बेबस हो जाएंगे। साथ ही इस फैसले से सीरिया में ईरान को बढ़त मिल जाएगी। हम में से कोई इस बात को नहीं मानता कि आईएसआईएस पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ये थे अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सूडान के अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस के साथ हुई झड़प में कम से कम 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। सूडान के कई शहरों में तेल और खाने के सामान की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन बुधवार को उत्तरी शहर एटबरा में शुरू हुए थे। कई स्थानों में सत्ताधारी दल के दफ्तरों में आग लगाने की खबरें भी मिली हैं। मैक्सिको ने अमरीका में शरण लेने का इंतजार कर रहे प्रवासियों को अमरीकी अदालत की ओर से फैसला सुनाए जाने तक अपने देश में रहने की इजाज़त दे दी है। मैक्सिको के नए राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादर के पद पर बैठने के बाद पहली बार प्रवासियों के प्रति नीति में बदलाव आया है। सोमालिया के जिहादी समूह अल शबाब ने अपने सदस्यों को आदेश दिया है कि वे इस्लामिक स्टेट समूह के लड़ाकों पर हमला कर उन्हें खत्म करें। आईएस के चरमपंथी सोमालिया में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल शबाब समूह का ताल्लुक अलकायदा से बताया जाता है। इसके एक प्रवक्ता ने आईएस के चरमपंथियों को कैंसर के तरह बताया है। अर्जेंटीना की एक संघीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांड डी किशर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन पर साइबर जासूसी करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि चीन के साइबर जासूसों ने कम से कम 12 देशों में सरकारी एजेंसियों और कंपनियों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने इस सिलसिले में चीन के 2 नागरिकों को पकड़ा है जिनका संबंध चीन की खुफिया एजेंसी से बताया जा रहा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए नवीन नेगी से।
अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाए हैं कि उसने अमेरिका की कई सरकारी एजेंसियों को हैक करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में अमेरिकी न्याय विभाग ने चीन के 2 नागरिकों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वे पश्चिमी देशों की सरकारी एजेंसियों को हैक कर रहे थे। इन दोनों चीनी नागरिकों के नाम झू हुआ और झेंग शिलोंग बताए गए हैं, जो कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट 10 समूह के सदस्य थे। यह समूह चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़ा है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी चीन पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि चीन ने दोनों देशों के बीच बने आर्थिक जासूसी समझौते का उल्लंघन किया है। अमरीकी खुफिया एजेंसी FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने इस संबंध में एक प्रेस वार्ता की और कहा,
By this investigation, the threats we face have never been more severe or more pervasive or more potentially damaging to our national security.
हमारी जांच में पाया गया है कि यह मामला बेहद गंभीर है और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके जरिए हमारे देश के आर्थिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चीन चाहता है कि वह अमेरिका को हटाकर दुनिया के शीर्ष स्थान पर खुद को स्थापित कर ले। ये थे FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे के शब्द। FBI ने बताया है कि इन हैकरों ने अमरीकी नौसेना के कंप्यूटर भी हैक किए और 1,00,000 से अधिक कर्मचारियों के निजी डेटा को चोरी किया। अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल रोड रोसनटीन ने कहा कि चीन ने साल 2015 में हुए समझौते का उल्लंघन किया है, जिसके तहत दोनों देशों ने वादा किया था कि वे एक दूसरे के खिलाफ आर्थिक साइबर जासूसी नहीं करेंगे। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि वह अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, जिससे चीन इस तरह की साइबर जासूसी पर लगाम लगाए। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन भी चीन पर इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने उन कंपनियों के नाम जाहिर नहीं किए हैं जिनके डेटा को हैक किया गया।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी।
BBC के वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए पॉर्न देखने का महिलाओं के खिलाफ हिंसा से क्या है संबंध।
मैं किसी भी फीमेल से मिलता तो दिमाग में मैं इमेजिन करने लगता था एक सेक्सुअल एक्ट उनको लेके।
क्या सिनेमा इंडस्ट्री पर हावी हो रही है वेब सीरीज?
हॉलीवुड की पिक्चर भी कुछ नहीं उसके सामने।
रिहान फजल सुनाएंगे बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज की जिंदगी के किस्से।
मैं उधर से अपनी जगह से उठा और जाके पीछे से उसको एकदम घट पकड़ के चिल्लाए चार्ल्स।
BBC इंडिया बोल का विशेष अंक जिसमें श्रोताओं के विचारों और अपेक्षाओं को मिलेगी जगह। BBC के खजाने से सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का विशेष साक्षात्कार।
मेरे पिताजी के साथ थोड़े से वर्ष मैंने गुजारे हैं जो उन्होंने मुझे गाना सिखाया।
कौन है वो युवा राजनेता जो अगले 20 सालों में कर सकते हैं भारत का नेतृत्व? सुनिए दिन भर में ये सब 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक।
मुंबई में CBI की विशेष अदालत आज सोहराबुद्दीन शेख तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में फैसला सुना सकती है। राजस्थान के गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख का अहमदाबाद में साल 2005 में और सोहराबुद्दीन के साथ रहे तुलसी प्रजापति की साल 2006 में कथित पुलिस एनकाउंटर के दौरान मौत हो गई थी। क्या है ये मामला और कौन है अभियुक्त, जानने के लिए हमारे सहयोगी आदर्श राठौड़ ने वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल से बात की।
ये जो फैसला आज होने वाला है उसकी शुरुआत हुई थी 2005 और 2006 में। 2005 में गुजरात और राजस्थान पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में सोहराबुद्दीन शेख नाम का राजस्थान का गैंगस्टर मारा गया था। पुलिस का ये दावा था कि सोहराबुद्दीन शेख गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए आया था। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजरात CID क्राइम ब्रांच को इसकी जाँच दी तो इस जांच के दौरान और एक 2006 में और एक हत्या हो गई जिसका नाम था तुलसीराम प्रजापति। यानी आज जो फैसला होने वाला है वो 13 साल पुराना फैसला है अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसकी जांच को लेके और इसके ट्रायल में 13 साल गुजर गए और 13 साल के बाद अब ये जो पुलिस के द्वारा की गई हत्याएं थी, क्योंकि ये आरोप सीबीआई ने और गुजरात सीआईडी क्राइम दोनों ने लगाया था कि ये फर्जी एनकाउंटर था, ये पुलिस के द्वारा की गई हत्या थी, उसका फैसला आज आने वाला है।
इस मामले में कौन कौन अभियुक्त हैं?
सबसे बड़ी महत्व की बात यह है कि इस केस में गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह और राजस्थान के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गुलाबचंद कटारिया समेत कई बड़े नाम इस केस में एक्यूज थे। लेकिन 2014 में जब केंद्र में सरकार बदली और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए, तो उसके बाद अमित शाह, गुलाबचंद कटारिया, गुजरात राजस्थान के आईपीएस अफसर, गुजरात और राजस्थान के नामी उद्योगपति, ये सभी को कोर्ट ने, यानी कुल 16 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया और ये कह के कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इसके चलते वो 16 लोगों को पहले ही छोड़ दिया गया था। अब जो आज फैसला आने वाला है उसमें गुजरात और राजस्थान के पुलिस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तबके के छोटे अफसर पे फैसला आने वाला है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जाना एनडीए के लिए कितना बड़ा झटका है और महागठबंधन को इससे क्या फायदा होगा, जानने के लिए मेरे सहयोगी आदर्श राठौड़ ने पटना में वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर से बात की।
इतना तो जरूर है कि कुछ न कुछ झटका तो एनडीए को लगा ही, इसलिए कि अगर कुछ भी जो पहले एनडीए के पक्ष में जो वोट थे वो अगर प्रभावित होते हैं उनके इस फैसले से, तो जाहिर है कि ये बीजेपी जेडीयू के लिए नुकसानदेह साबित होगा।
कितनी अहमियत है उनकी किसी पार्टी के साथ या किसी गठबंधन के साथ होने की?
उन्होंने कहा एनडीए में अपमान हो रहा था, तो मेरे ख्याल से ये बात सच है कि उपेंद्र कुशवाहा के दबाव वाले बयान और तेवर दोनों की बीजेपी नेतृत्व ने अनदेखी की और जाना हो तो जाइए वाला रुख दिखाया। और ये भी जाहिर है कि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी से ज्यादा जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से अलग होने देने जैसी भूमिका निभाई। साथ ही ये भी सोचने वाली बात है कि कुशवाहा खुद तो यूपीए में चले गए लेकिन उनकी पार्टी के एमएलए एमएलसी उनके साथ नहीं गए, तो अब ये समझा जा सकता है कि पूरी ताकत जो समझी जा रही थी उपेंद्र कुशवाहा की वो बिहार में निश्चित रूप से कमजोर हुई है। लेकिन उनका जाना महागठबंधन को बिहार में भी और बाहर भी मनोबल तो उसका बढ़ाएगा ही।
किस तरह से संभव है कि एक तरफ उनको, एक पक्ष उनको अपने लिए फायदेमंद मान रहा है जबकि दूसरा इतना कैजुअल होगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए?
साफ बात है कि उतना महत्व नहीं दिया गया या उनको साथ जोड़े रखने की कोई बड़ी कोशिश नहीं दिखी। मेरे ख्याल से इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि चूंकि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो एक तनावपूर्ण संबंध है दिखने लगे थे, जो पहले भी कभी रहे थे, बाद में फिर वो उसमें कमी आई, लेकिन वो इतना बढ़ गया कि लगता नहीं था कि जेडीयू के इस रुख को नजरअंदाज करके बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ के रखेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जेडीयू का जो बल है इस गठबंधन में, बिहार में सत्ता में, उसके आगे कुशवाहा उतने वजनदार नहीं थे, इसलिए उनको जाने दिया गया।
अब इसी तरह की कुछ आवाजें लोजपा की तरफ से सुनाई दे रही हैं, तो क्या लगता है कि इससे और मुश्किलें मर सकती हैं एनडीए की?
बिल्कुल सही बात है, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर है। और आश्चर्य ये भी है कि जिस रामविलास पासवान या चिराग पासवान के रुख या कहें कि मुखर दबाव में एससी एसटी एक्ट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने पलटवाया, वही अब किसान और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाकर मोदी सरकार की ही मुश्किल बढ़ाने लगे हैं। तो अब जाके अगर वो अलग हो रहे हैं या अलग होने का संकेत दे रहे, हो सकता है कि बीजेपी के साथ उनका फिर से उनकी नाराजगी दूर हो जाए और वो गठबंधन में रहें, जिसकी उम्मीद अभी तो लोग ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो तब तो ये मान लीजिए कि ये बीजेपी जेडीयू के लिए बिहार में एक बड़ी चुनौती, ये स्थिति बन जाएगी, नुकसान बीजेपी जेडीयू का प्रत्यक्ष दिखेगा।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर, जो विश्लेषण कर रहे थे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा से महागठबंधन को कितना फायदा हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में शिवलिंग और मंदिर के अवशेष मिलने के बाद लोगों की नाराजगी सड़क से लेकर सदन तक जा पहुंची। गुरुवार को इस मुद्दे पर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस मुद्दे को जबरन तूल दिया जा रहा है और कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, सुनिए हमारे सहयोगी समीरात मज मिश्र की जुबानी।
वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना एक बार फिर विवादों में आ गई है और परिसर के आसपास बड़ी संख्या में मंदिरों के मलबे और शिवलिंग मिलने का मामला काफी गर्म हो गया है। इस मुद्दे पर जहां विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ, वहीं वाराणसी में स्थानीय लोगों का रोष भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मंदिर प्रशासन अभी भी इस बात से इनकार कर रहा है कि मंदिरों और मूर्तियों के ये अवशेष। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह तो इस पूरे प्रकरण को ही राजनीति से प्रेरित बताते हैं।
ये कहना सर्वथा पूर्णतः गलत एवं कूटरचित है कि मलबा कहीं से भी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के क्षेत्र से निकाल कर फेंका गया है और इसमें सत्य कहीं से भी मुझे प्रतीत नहीं होता कि ये पूरा एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी का रूप लगता है। पूरा जो मलबा उठाकर वहां पर रखा गया, जिसको बाद में यह प्रचारित किया गया कि ये शिवलिंग हमारे मलबे से निकल के आए हैं, और एकाएक इस पूरी एक्टिविटी में इतनी वृद्धि होना, ये अपने आप इंगित करता है कि कौन से लोग हैं, उनको किसको इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी लाभ की आशा महसूस हो रही है कि इस तरह की अफवाह उड़ाकर जनभावना को आकर्षित किया जाए।
बुधवार को मंदिर परिसर के आसपास बड़ी संख्या में मलबे में दबे शिवलिंगों के मिलने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के अलावा कुछ अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी इस विरोध में शामिल हो गए। ये मामला करीब एक साल से ही काफी विवादित रहा है, जब सुंदरीकरण के नाम पर कथित तौर पर बड़ी संख्या में मंदिर तोड़े गए। इसके विरोध में आंदोलन कर रहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि वो इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे।
28, 29, 30 जनवरी 2019 प्रयाग में जो अर्ध कुंभ का मेला लगा हुआ है, उसी में परम धर्म संसद का दूसरा अधिवेशन होगा, जिसमें काशी में तोड़े जा रहे मंदिरों के बारे में और जो ये मूर्तियों का अपमान हो रहा है विशेष करके, इसके बारे में पूरे देश और पूरे विश्व के लोग जो आएंगे उनके बीच में चर्चा होगी। हम अनुरोध कर रहे हैं सरकारों से कि आप अभी भी सामने आइए, बात करिए। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हमारा केवल धार्मिक एजेंडा है। हमारे मंदिरों को मत तोड़ो, छोड़ दो, हम बोलना चुप कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं रुको, आप तोड़ते ही जाओगे मंदिरों को, आप हमारी मूर्तियों को तोड़ के फेंकते जाओगे, मलबे में वो मिलेंगी और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, तो स्वाभाविक है कि हम अपनी आवाज़ को इतनी ऊंची करेंगे कि फिर आपको नहीं सुनाई देती है, कम से कम ये तो ना कह सको आप।
वही गुरुवार को विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य दिनेश सिंह ने भी इस मामले में सरकार को घेरा। हालांकि सरकार का कहना है कि विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है। सरकार के जवाब से सदन में विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हैं, तो वाराणसी में स्थानीय लोगों का आक्रोश भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। समीरात मजमिश्र, BBC, लखनऊ।
अफ्रीका की युगांडा से चला जीका वायरस ब्राजील के बाद एशिया पहुंचा तो राजस्थान में उसकी मौजूदगी का पता चला। इसके बाद अमरीका से चेतावनी आई कि राजस्थान जाने वाले विदेशी पर्यटक एहतियात बरतें तो बेहतर होगा। तो क्या जीका वायरस राजस्थान आने वाले सैलानियों को रोक पाएगा? जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
मरुस्थली राज्य में यह मौसम और माहौल सैलानियों को न्योता देता रहा है, लेकिन जब अमेरिकन संस्था ने जीका वायरस को लेकर चेतावनी जारी की तो पर्यटन कारोबारी ठिटक गए, लेकिन कहा इस चेतावनी का सैलानियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान में कोई 2 माह पहले जीका वायरस ने अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया था, लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य महकमे ने तुरंत कार्रवाई की और दावा किया कि इस वायरस के प्रभाव को निस्तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने BBC को बताया कि राजस्थान अब जीका वायरस से पूरी तरह महफूज है, लिहाजा खतरे की कोई बात नहीं है। जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सहायक प्राचार्य डॉक्टर रमेश देवासी कहते हैं,
जीका वायरस के केस जुलाई अगस्त सितंबर में राजस्थान में मिले थे, लेकिन वर्तमान में
पर्यटन महकमे में एक अधिकारी ने नाम ना जाहिर करते हुए कहा कि इस चेतावनी का शायद ही कोई असर हो। राज्य में हर साल कोई 16 लाख विदेशी सैलानी राजस्थान के किले महलों और संस्कृति से रूबरू होने आते हैं। इसमें 1.5 लाख अमेरिकी सैलानी भी होते हैं। पर्यटन विशेषज्ञ संजय गौतम कहते हैं इस चेतावनी से सैलानियों की आमद प्रभावित नहीं होगी।
प्लान कर रखे हैं टूर, समझ लीजिए यूएस से कोई भी कपल है जिसने 10, 12, 15 जनवरी, 15 दिसंबर को ट्रेवल का प्रोग्राम बना रखा था, उसमें पेमेंट पे कर रखा है, 15 तारीख को उनकी फ्लाइट है या 20 तारीख को फ्लाइट है, तो अब ऐसे में कोई बहुत ज्यादा कोई इसका इम्पैक्ट पड़ जाए तो आई डाउट। ये हो सकता है कि महीने डेढ़ महीने बाद इसका असर, जैसे अब जो महीने भर बाद जिसने प्लान किया होगा मेरे को जनवरी के एंड में ट्रेवल करना है, वो लोग जरूर हो सकता है सतर्कता महसूस करें या सतर्क होकर शायद ट्रेवल बुक ना करें, लेकिन अभी फिलहाल जो टूरिस्ट ट्रेवल कर रहे हैं उनको 3-4 दिन, 5 दिन बाद जो ट्रेवल करने वाले हैं, क्रिसमस न्यू ईयर पे सारे फ्लाइटें होटल सब कुछ बुक है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 29 अक्टूबर के बाद जीका वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है। राजस्थान के मेले उत्सव और वास्तुशिल्प का सतरंगी संसार सैलानियों को बुलाता रहा है। विशेषज्ञों को यकीन है कि सैलानियों की आमद में कोई गतिरोध नहीं आएगा। नारायण बारेट, BBC जयपुर।
क्या आपने कभी सुना है कि पंचायत के चुनाव में प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया हो? जी हां, पूर्वोत्तर के एक राज्य में ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से जीतने वाली पार्टी अब हारने वाली पार्टी के निशाने पर है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
असम में पंचायत चुनाव की जीत ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से लेकर प्रदेश के हर नेता में जोश भर दिया है। हालांकि पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने भी अच्छी खासी सीटें जीती है। वैसे तो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने करीब 2.5 साल के कार्यकाल में ज्यादा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन नहीं किया है, लेकिन पंचायत चुनाव में जीत को लेकर मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियों पर बात की बल्कि कांग्रेस को बेईमान तक कह दिया।
7 साल ऐसे ही देशवासियों को धोखा देते आए, लूटते आए, इसलिए आज उन लोगों का हालत ऐसा है कि देश उनको उसी रूप से ही देखता है। राहुल गांधी जितना भी सपना क्यों ना देखे प्रधानमंत्री बनने का, वो प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाएगा। इसलिए ये पार्टी ईमानदार नहीं है, ये पार्टी बेईमान है।
बीजेपी भले ही पंचायत चुनाव की जीत को लेकर उत्साह से भरी हुई है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तादाद में हेलीकॉप्टर का उपयोग किया उसको लेकर पार्टी को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत चुनाव में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल और कांग्रेस के लिए बेईमान शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताते हुए असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने BBC से कहा,
मोदी जी ने ये जवाब दे दिया देश को, जो कांग्रेस का वन ऑफ द फाउंडर है हमारा महात्मा गांधी, गांधी जी का तस्वीर, गांधी जी का सिंबल उन्होंने क्यों स्वच्छ भारत में यूज किया। पंचायत चुनाव ये गांव का चुनाव है, ये दरिद्र लोगों गरीब लोगों का चुनाव है, और इसमें वो लोग जिस ढंग से हेलीकॉप्टर यूज किया है, 2-2 हेलीकॉप्टर डेली यूज किया है, उससे उसका जो खर्चा हुआ है वो कहाँ से आएगा।
पंचायत चुनाव में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को BJP कहीं से भी गलत नहीं मानती और न ही बेईमान शब्द के उपयोग को। असम प्रदेश BJP के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता कहते हैं
कि चुनाव का मौसम है तो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे हेमंत विश्व शर्मा प्रिय नेता हमारे हर जगह उपस्थित हो, इसलिए उन्होंने जो है इस सुविधाओं का उपयोग किया।
दरअसल असम राज्य चुनाव आयोग ग्रामीण स्तर पर होने वाले पंचायत चुनाव में प्रचार के खर्चे के लिए बहुत छोटी रकम तय करता है। ऐसे में राज्य के वरिष्ठ पत्रकार वैकुंठनाथ गोस्वामी कहते हैं,
1 घंटा उड़ान के लिए वो लोग 99,000 लेता है, ये लिमिट कर दिया है 6 लाख से 16,000 तक इलेक्शन कमीशन में, लेकिन ये हेलीकॉप्टर का खर्चा किस अकाउंट में जाएगा वो उसका कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया।
पंचायत चुनाव में भले ही BJP की जीत हुई है, लेकिन कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन कर भगवा पार्टी को साफ संकेत दे दिया है कि यहाँ मुकाबला एक तरफा होने वाला नहीं है, लिहाजा BJP के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव आसान नहीं होगा। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
दिल्ली में इस समय तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस है और स्टूडियो में नवीन नेगी शॉल ओढ़कर बैठे हैं, अखबार आ चुके हैं उनके हाथ में।
जी संदीप जी, तो दिल्ली से छपे अखबारों की बात करें, सर्दी तो बढ़ी चुकी है और खबरों में भी ये छाया हुआ है कि दिल्ली में जो सर्दी है वो नैनीताल जो पहाड़ी क्षेत्र है, शिमला, इन सबसे ज़्यादा ठंड दिल्ली में पड़ रही है। 4 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान न्यूनतम पहुँच गया था, जो कि 3 साल का एक रिकॉर्ड है, दिसंबर के महीने में जो टूटा है। ये खबरें जो है आज के अखबारों में है।
अभी तो सर्दी बाकी है।
जी, सुर्खियों की बात करें अखबारों की, तो NDA गठबंधन में जो टूट कल हुई है उसकी खबर जो है तमाम अखबारों ने अपनी सुर्खियों में बनाया है, अलग अलग शीर्षक लगाए हैं। दैनिक जागरण मेरे सामने रखा है जिसका शीर्षक है कि भाजपा ने लोजपा को मनाया,
ऐसा माना जा रहा है।
जी, वो मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ। दोनों रामविलास पासवान और चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दैनिक भास्कर की जो सुर्खी है उसमें लिखा है कि बिहार में बड़ा महागठबंधन का कुनबा, NDA छोड़ने वाले कुशवाहा ने थामा हाथ। और नवभारत टाइम्स ने सुर्खी लगाई है कि गठबंधन के चिराग बचाने में जुटी बीजेपी। तो अलग अलग तरह की सुर्खियाँ हैं। दैनिक भास्कर में एक और खबर जो छपी है और कल काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा भी हुई थी, वो है अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का एक बयान, जो एक वीडियो उनका आया था जिसमें उन्होंने कहा कि देश में रहने में उन्हें डर लग रहा है।
काफ़ी चर्चा हो रही है उनके इस वीडियो
की। कल काफ़ी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि आज के वक्त में पुलिस अफसर की हत्या से ज़्यादा तवज्जो गाय की मौत को दी जा रही है।
बुलंदशहर मामले का जिक्र कर रहे हैं।
बुलंदशहर मामला जो वहाँ पे हिंसा भड़की थी और उसके बाद SHO की जो मौत हो गई थी उस पर,
हालांकि काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी समय के बाद बयान आया है इस तरह,
काफ़ी वक्त के बाद आया है। पर कहा जा रहा है कि इसके साथ ही कई लोग इस तरह की बात भी कह रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले जो 6 साल के बाद हामिद अंसारी जो वापस आए थे युवा, उनके जो है उदाहरण रखे जा रहे हैं कि उन, वो भी एक उदाहरण जिन्होंने कहा कि भारत लौटने पर उन्हें कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है। तो तमाम तरह के अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। ये सब खबरें आज के अखबारों में छाई हुई हैं। इसके अलावा एक और खबर जो है उसमें जिक्र किया है कि सरकार ने अगले साल मार्च के अंत तक देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को राहत देने का ऐलान किया है और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको अपनी सुर्खी बनाया है। उसने लिखा है कि सरकार की ओर से इन बैंकों को 83,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। ये बैंक जो है NPA से जूझ रहे हैं, यानी कि इनके पास जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा हो चुका है, ताकि ये अब इस मदद से बैंक कर्ज दे सकें।
बहुत शुक्रिया नवीन नेगी, दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियाँ बता रहे थे। और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। पूर्व सलामी बल्लेबाज WV रमन को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। रमन के साथ इस पद की दौड़ में भारतीय पुरुष टीम के पूर्व कोच गैरी कस्टन भी शामिल थे। BCCI की चयन समिति में पूर्व कप्तान कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और S रंगास्वामी ने 28 लोगों की लिस्ट में से रमन का चयन किया है। हालांकि इस पद के लिए गैरी कस्टन का नाम सबसे आगे लिया जा रहा था, लेकिन उनकी नियुक्ति में अनिश्चितता बनी हुई थी क्योंकि वो फिलहाल IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस पद के लिए जिन 28 लोगों के आवेदन मिले उनमें वेंकटेश प्रसाद, मनोज प्रभाकर, ट्रेंट जॉनस्टन, दिमित्री मास्केरेनस, ब्रेड हॉग और कल्पना वेंकटाचार के नाम शामिल रहे। 53 साल के WV रमन भारत के लिए 1988 से 1997 के बीच 11 टेस्ट और 27 वनडे खेल चुके हैं। वो फिलहाल बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैटिंग कंसल्टेंट नियुक्त हैं। और वहीं हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की नई जर्सी लॉन्च की गई। भारतीय टीम अगले महीने UAE में होने जा रहे AFC एशियन कप में इस जर्सी में नजर आएगी। पिछली बार 2015 में हुए एशियन कप के लिए भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ऐसे में इस बार उससे कितनी उम्मीदें रखी जा सकती हैं, इस पर बात कर रहे हैं फुटबॉल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद।
देखिए, मुकाबला तो आसान है नहीं। पिछले दिनों हमने चाइना से एक फ्रेंडली मैच खेला, लोग कहते हैं उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन जो चाइना के पास जो बैंक स्ट्रेंथ है, उनके जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, जो बाकी के खिलाड़ी हैं, दे आर वेरी गुड। उनके साथ हमने ड्रॉ खेला है मैच और बेशक हम प्रेशर में थे। गोलकीपर गुरप्रीत था, इज अ ग्रेट गोलकीपर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर गुरप्रीत ने वैसे ही खेल खेला जो अभी तक खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम ड्रॉ जो करेंगे उससे हमारी कुछ उम्मीद बन जाए।
AFC एशियन कप अगले साल 5 जनवरी से 1 फरवरी के बीच UAE में खेला जाएगा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
BBC समाचार। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन पर साइबर जासूसी का आरोप लगाया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस अगले साल फरवरी माह के अंत तक अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। ब्रिटेन के गैटविक एयरपोर्ट पर दिखे अज्ञात ड्रोन के चलते विमानों की आवाजाही अभी तक रुकी हुई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। अब संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगला प्रसारण दिन भर समय जानते हैं आप भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे।